Godlywood Studios presents ब्रह्मकुमारीज पॉडकास्ट। जिंदगी बने आसान।
नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि मन एक घोड़े के समान है, एक बेलगाम घोड़े के समान, जिसे पकड़ना तो बड़ा ही मुश्किल है। साथ ही साथ ऐसा भी कहा गया है कि मन जीते जगत जीते। तो मन अपने आप में एक पहलू, एक ऐसा पहलू बन के रह गया है ज़िंदगी में, जिसमें हमें बहुत कंफ्यूजन है कि ये बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। इस वास्ट सब्जेक्ट के बारे में जानने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सतीश गुप्ता जी। ओम शांति, वेलकम टू आवर शो। डॉक्टर साहब, बात कर रहे हैं मन की। मन कहा गया है कि एक बेलगाम घोड़े के समान है, सच है या झूठ है?
सी, मन एक ऐसी पहेली है जी, जिसको आज तक सभी साइंसदान, महात्माएं, साधु जी, दार्शनिक, इसके बारे में बहुत सारी परिभाषाएं, बहुत तरह से लोगों ने समझाने की कोशिश की है, पर रियल मन क्या है ये कोई समझ नहीं पाया।
अच्छा।
और मन को घोड़ा इसलिए कहा जाता है कि जैसे घोड़ा कभी रात को भी खड़ा ही रहता है।
हाँ,
रात को कभी किसी ने आज तक घोड़े को बैठे नहीं देखा हुआ।
हाँ।
मतलब बैठ के नहीं सोता है, खड़े होकर ही सोता है,
अलर्ट रहता है हर वक्त,
मतलब हमेशा ही खड़ा रहता है।
ओके।
सोएगा भी तो खड़े खड़े ही, कभी बैठेगा नहीं। तो मन भी ऐसे ही है, मन में थॉट्स, चाहे आप सो रहे हैं चाहे जाग रहे हैं, तो मन में थॉट्स, इमोशंस हर समय ही चलते रहते हैं, हर समय, सोते हुए भी, जागते हुए भी। तो मन कभी भी, इसलिए से घोड़े, मन की उपमा घोड़े से की गई है कि मन घोड़े के समान है। जैसे घोड़ा कभी नहीं सोता, हमेशा खड़ा रहता है, मन भी हमेशा खड़ा रहता है। हाँ, उसकी स्पीड, एक घोड़ा दौड़ता है कभी तो बहुत तेज, कभी घोड़ा धीरे चलता है, कभी घोड़ा खड़ा रहता है, पर कभी बैठता नहीं। ऐसे मन भी कभी बैठता नहीं, मन में कभी थॉट्स पूरे ख़त्म हो जाए ऐसा नहीं होता है। अगर हम शरीर में हैं तो मन जब तक हैं तब तक मन चलता रहता है। मन का काम है विचार करना,
मन का काम है विचार करना। अब ये विचार जो है, इसके बारे में कुछ बताइए, क्योंकि विचार तो कई प्रकार के चलते हैं पूरे दिन में, उसको अगर कैटेगराइज करें तो किस तरह से करें?
हाँ, वैसे मन के विचार तो, जैसे हम यूजली 4 या 5 तरह के विचारों की बात करते हैं
जी।
पहला तो जैसे एक नेसेसरी थॉट्स होते हैं, नेसेसरी मतलब जैसे हमें आवश्यक विचार है, जैसे हमें घर के डे रूटीन के में सारे काम करते हैं, ऑफिस जाना है, घर में खाना बनाना है, अपने जो रूटीन, हमें नहाना है ना, अपनी जो भी हमारी एक्टिविटी, डेली की एक्टिविटीज हैं, उसके विचार आते हैं, वो नेसेसरी थॉट्स हैं
जी।
फिर कुछ थॉट्स ऐसे होते हैं जो वेस्ट थॉट्स होते हैं, वेस्ट मतलब जो मतलब हम व्यर्थ करते रहते हैं, वो ऐसा क्यों करता है, उसने ऐसा क्या, क्यों, कैसे वाले,
वेस्ट
व्यर्थ विचार इसे कहते हैं। वो ऐसे मतलब है बस दूसरों के बारे में, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, इस तरह से क्यों हो रहा है,
या सोसाइटी के बारे में,
सोसाइटी के बारे में,
एनवायरनमेंट के बारे में,
एनवायरनमेंट के बारे में, कई बार अपने बारे में, कई बार अपने बारे में भी,
अच्छा,
संबंधों के बारे में भी,
करेक्ट,
दूसरों के मतलब अपने बारे में, दूसरों के बारे में, व्यर्थ जिसमें मतलब कुछ निकलने वाला नहीं
जी।
और तीसरे तरह के विचार जो होते हैं वो होते हैं नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव होते हैं, जैसे कि हम क्रोध कर रहे हैं,
करेक्ट,
उससे हमारी एनर्जी भी जलती है, दूसरे की भी जलती है,
correct,
और बहुत फास्ट हम थक जाते हैं,
एग्जॉस्ट हो जाते,
एग्जॉस्ट हो जाते,
अंदर से इनकम्प्लीटनेस भी आने,
इनकम्प्लीटनेस आती है
जी, बिल्कुल।
जैसे चिंता के थॉट्स हैं, चिंता हम कर रहे हैं
जी
ना, एनर्जी जलती है, चिंता एक मर्ज के समान हो जाती है
जी।
तो इस तरह के विचार जो होते हैं, दूसरों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो वो एक तरह के नेगेटिव थॉट्स, यहाँ एनर्जी बहुत जल्दी से खत्म होती है। फिर चौथे तरह के विचार हैं, वो हैं पॉजिटिव थॉट्स जो कि जिनसे हमारी एनर्जी कंजर्व होती है, जिससे हमें खुशी पैदा होती है, नेगेटिव थॉट्स से हमारी खुशी खत्म होती है
जी,
वेस्ट थॉट्स से हम थक जाते हैं
जी,
और पॉजिटिव थॉट्स से हमें खुशी पैदा होती है। मतलब वो पॉजिटिव थॉट्स हैं, वो बेसिकली कहते हैं कि अगर हम राइट डायरेक्शन, समाज की नियम मर्यादाओं के अनुसार करते हैं, और या हम कहें अगर इसको और गहराई में चले जाएँ तो अगर हम परमात्मा की डायरेक्शन पे करते हैं
okay,
तो वो पॉजिटिव थॉट्स हैं, उनका पुण्य जमा होता है।
पर परमात्मा की डायरेक्शंस, ये हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं कि ये परमात्मा के डायरेक्शंस हैं?
वो यहाँ जब हम ब्रह्मा कुमारीज में जो राजयोग का सुनते हैं ना,
हाँ जी,
वहाँ पर परमात्मा की श्रीमद गाई जाती है, गीता में भी श्रीमद भगवद गीता गाई गई ना,
हाँ जी,
तो वो जो है उसमें डायरेक्शंस, उसको हम अलग टॉपिक में हम लेंगे
जी,
किंतु ये जो बेसिक जो है पॉजिटिव थॉट में जो हमारी खुशी को बढ़ाए,
बिल्कुल
एनलाइटमेंट करे, लाइट हमें लाइट बना देता है,
बिल्कुल।
नेगेटिव थॉट हमारे भारी बना देते हैं,
बिल्कुल। इस तरह जी, अभी जब हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव थॉट्स की, इसके अंदर भी एक और पहलू आता है कि पॉजिटिव एक तो खुद के लिए होता है और दूसरा पूरे विश्व के लिए होता है। तो शुरुआत कहाँ से करें, खुद से या विश्व से? क्योंकि इसमें भी क्योंकि आधा समय तो मेरा इसमें चला जाता है कि कैसे मैं खुद पॉजिटिव रहूं और फिर दूसरों को पॉजिटिविटी बांटूं। तो ये दोनों में से सबसे पहले कौन सा आता है?
सबसे पहले तो हमारा जो है स्वयं के लिए होना चाहिए ना।
अच्छा।
अगर हम स्वयं पॉजिटिव, हमारा खुद कम पॉजिटिव है, दूसरों को पॉजिटिव सोच सकते हैं
दूसरों के बारे में।
मैं खुद ही अगर नेगेटिव हो जाऊं, क्योंकि हम सोर्स तो मैं हूं ना,
करेक्ट,
अगर मेरे पास ही नेगेटिव है तो मैं दूसरों को पॉजिटिव देने का मतलब ही नहीं होता। मैं चाहूंगा हम ना आज आपको थोड़ा मन के बारे में थोड़ा गहराई से बताएं कि मन क्या है। मन बेसिकली है क्या, जो मैंने कहा ना बहुत मुश्किल है बताना,
क्योंकि
पिछले कुछ सालों में हमने इस पे बहुत अध्ययन किया है और काफी साइंटिफिक स्टडीज भी की हैं माइंड के ऊपर लेकर, माइंड के विषय को लेकर के, पेशेंट्स पे भी की हैं और आम पब्लिक पे भी की हैं और उनकी समस्याओं को गहराई से एनालाइज किया है। तो मैं उस पर अपना जो पिछले कुछ लगभग 17-18 साल का चिंतन जो इस पे चला है और जो रिसर्च की है हमने DRDO के साथ मिल करके, उसके बारे में उसको मैं एनालाइज करके आपको बताता हूँ मन क्या है।
जी बिल्कुल।
मन जो है बेसिकली मन के चार एस्पेक्ट होते हैं। मन खाली सोचने की शक्ति नहीं है। मन में चार बातें हैं। पहली बात तो उसमें विचार है, जो हम सभी जानते हैं, थॉट्स जिसे कहते हैं, संकल्प भी कहते हैं। और दूसरा जो एस्पेक्ट है मन का वो है भावनाएं। मन और भावनाओं में, विचार और भावनाओं, संकल्प और भावनाओं में क्या फर्क है? जब कोई संकल्प हम इंटेंसिटी से करते हैं, बार बार करते हैं, तो वो इसे एक डॉट हमने लगाया है, विचार एक डॉट की तरह से है, वही डॉट हम बार बार लगाते जाएं, एक डॉट, दो डॉट, तीन डॉट, चार डॉट, पांच डॉट, छह डॉट, सात डॉट, मतलब बार बार किया,
रेपिटेटिव,
तो वो एक भावना बन जाता है। राइट? जैसे हमें कोई व्यक्ति हमें मिलता है, हमें एक विचार उसको देख करके आता है, फिर वो व्यक्ति बार बार मिलता है,
विचार बदलते भी जाते हैं कई बार,
कई बार ऐसा भी होता है कि तो वो व्यक्ति हमें बार बार हमें उसी तरह से बिहेव करता है,
सेम ही तरह से अगर भी, तो फिर सेम विचार पे
रिपीटेड रिपीटेड इंप्रेशन होता जाएगा ना,
बिल्कुल बिल्कुल,
तो फिर हमारी उसमें भावना हो जाएगी, ये व्यक्ति बहुत अच्छा व्यक्ति, बहुत भला आदमी है,
और ऑपोजिट भी होता है,
और अगर ये आदमी फिर वो बुरा करता, ये तो व्यक्ति ऐसा ही, ये बुरा है,
बिल्कुल,
तो हमारी भावनाएं उसके प्रति बुरी बैठ जाती है।
पर कई बार फर्स्ट इम्प्रेशन में भी ऐसा होता है कि वो इम्प्रेशन इतना स्ट्रांग होता है कि मैं उसको बार बार होने पे भी चेंज नहीं कर पाती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि वो व्यक्ति शायद अगली बार अच्छे वे में मेरे सामने भी आए, लेकिन मेरी इम्प्रेशन वैसे,
फर्स्ट इम्प्रेशन भी ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है, पर यूजुअली रूटीन ये है कि कोई थॉट, इंटेंस थॉट्स बिकम इमोशंस।
ओके जी,
स्पेशली रिलेशंस में होता है, कई बार बाहर के लोगों के साथ भी ऐसा होता है।
जी बिल्कुल।
फिर तीसरा जो है वो एटीट्यूड है
जी,
इसे हिंदी में वृत्ति भी कहते हैं, दृष्टिकोण भी कहते हैं
जी।
ये जब कोई विचार को हम बार बार करते करते इतना करते हैं, इतना करते हैं, इतना करते, एक सर्कल बन जाता है।
ओके।
और उसी में घूमते रहते हैं, जैसे आप देख लीजिए, डॉट, एक डॉट लगाया, दो डॉट, तीन चार पाँच छः दस पंद्रह बीस पचास साठ सौ, सर्कल पूरा हो गया, अब उसके बाद कहाँ जाएंगे?
फिर
उसी सर्कल में, उसी सर्कल में घूमते रहते हैं।
करेक्ट।
वो फिर एक वृत्त बन जाता है, वृत्त ना, सर्कल बन जाता है।
ओके।
और फिर वो सर्कल हमारे से, उस सर्कल में फंस जाते हैं, वो उसे वृत्ति कहते हैं, एटीट्यूड, नजरिया, दृष्टिकोण,
संस्कार,
नहीं संस्कार बाद में बनता है,
वो अलग चीज है। ओके।
ये वृत्ति बन गई अभी हमारी, एटीट्यूड बन गया, मतलब एटीट्यूड बन गया हमारा उस व्यक्ति के प्रति।
ओके। उस व्यक्ति के प्रति
या उस समस्या के प्रति
जी,
या उस दिन के प्रति
जी,
एटीट्यूड बन गया,
बिल्कुल,
राइट,
यस,
तो वो हमारा एटीट्यूड बन गया, तो इसे वृत्ति कहते हैं। ये भी मन की एक एस्पेक्ट है।
ओके। और नेक्स्ट, इसके बाद,
इसके नेक्स्ट जो है वो है फिर स्मृतियां, यादें, इंग्लिश में मेमोरी कहते हैं। जब एटीट्यूडल चेंज हो जाता है तो फिर हमारे अंदर उस अनुसार कर्म होते रहते हैं।
ओके।
जब, क्योंकि हम उस सर्कल में फंस गए ना,
बिल्कुल,
और कर्म बार बार उसी अनुसार होगा।
करेक्ट।
कर्म होगा तो फिर रिकॉर्ड होगा, हमारे अंदर रिकॉर्ड होगा
और वो रिकॉर्ड इंप्रेशंस बनकर के मेमोरीज में
पहले हमारी मेमोरी में चला जाएगा।
ओके,
क्योंकि रिकॉर्ड उसके पहले रिकॉर्डिंग नहीं होती है, उसके पहले रिकॉर्डिंग जब कर्म हम करेंगे ना, हाथ आंखों से, कर्मेंद्रियों के द्वारा, आंख से, मुख से, कान से, हाथों से, पैरों से, जब कर्म करेंगे तो ये लॉ है नेचर का
जी,
ना स्पिरिचुअलिटी में भी लॉ है और नेचर का भी लॉ है
जी।
जो भी हम कर्म करते हैं वो अंदर रिकॉर्ड होता है।
ओके,
जब तक कर्म में नहीं आता तब तक रिकॉर्ड नहीं होता।
ओके,
राइट
जी।
तो ये रिकॉर्ड हो गया, तो ये बन गया हमारा मेमोरी, बन गई याद, बन गई। अब जब जब वो व्यक्ति सामने आएगा तब तक वो फाइल, भले 20 साल के बाद आए, वो फाइल खुल जाएगी,
ऑटोमेटिकली खुल जाएगी,
ऑटोमेटिकली खुल जाएगी।
ओके, इसीलिए कहते हैं कि जब भी मैं कितने समय बाद में भी अगर किसी व्यक्ति से मिलूंगी तो भी उनसे वैसे ही वाइब्रेशंस होते हैं। और फ्रेंडशिप में भी ऐसे कहते हैं कि भले कितने भी टाइम के बाद में हम मिलेंगे लेकिन वही दोस्ती अभी भी कायम है।
जैसे पति पत्नी का होता है,
बिल्कुल,
हस्बैंड वाइफ का होता है,
बिल्कुल,
जैसे बच्चे और माँ बाप का होता है,
बिल्कुल,
दो दोस्तों का होता है,
दो दोस्तों का होता है,
माँ और बच्चे का होता है, जैसे
जी,
मतलब माँ बच्चे को उसी तरह से देखेगी, भले वो 30 साल 40 साल का हो गया, माँ 60 साल की हो गई है, हालांकि वो जैसे बच्चा था छोटा उसी ढंग से देखती है, उसी नजर से देखती है, 70 साल का देखे तो वो मेमोरी रिकॉर्ड हो गई, है ना, रिकॉर्ड हो गई वो पुरानी मेमोरीज। हो सकता है बच्चा उसके बदल गया हो 40 साल में, किंतु माँ उसी मेमोरी से,
उसी मेमोरी से और उसी आंखों से,
उन्हीं आंखों से देखती, उसको वही दिखाई देता है।
करेक्ट,
राइट। फिर जैसी स्मृति होती है फिर वैसी हमारी, हमें वैसी हमारी समर्थ होती है ना, एबिलिटी टू डू,
समर्थी, ओके, कार्य करने की क्षमता, ओके।
तो इसके फिर स्मृति जब बन जाती है, और स्मृति एक तरह स्मृति फिर हमारा एक बिलीफ सिस्टम भी कहलाता है।
ओके,
बिलीफ सिस्टम ना
जी,
कि हमारा फिर उसको हमारा एक तरह से बिलीफ सिस्टम बना, जैसे अभी हमारी एक किसी ने बिल्ली ने रास्ता काट दिया,
हाँ,
किसी ने स्नीज कर लिया, शनिवार का दिन है,
बस
कई सारी बातें, उसका मुख देख लिया, आज काम खराब हो जाएगा, है ना, आज ये काम हो, मतलब ये फिर बिलीफ सिस्टम जैसे हमारे होते हैं
जी।
बहुत सारे बिलीफ सिस्टम्स होते हैं
जी,
क्योंकि कई बार हमारी लाइफ टोटली बिलीफ सिस्टम, जिनके बहुत सारे कि हम एरोप्लेन में नहीं जाएंगे वहाँ एक्सीडेंट हो जाएगा, हम फला के पास नहीं जाएंगे वहाँ ऐसा हो जाएगा,
कितनी सारी भ्रांतियां है ना एक तरीके से,
भ्रांतियां नहीं, वो हमारे सब इसमें भी साइंटिफिक एंगल से मैं आपको बता रहा हूँ वो सब किस तरह से हमारे बिलीफ सिस्टम बन जाते हैं, और उसमें हम परवश हो जाते हैं, चाह करके बदल नहीं पाते कई बार
जी।
और फिर हमारे संस्कार, फिर ये हमारे संस्कार जो है उसके बाद फिर हमारे संस्कार बनते हैं, जब उस मेमोरी को बार बार हम इमर्ज करके वो कर्म करते जाते हैं
तो फिर वो संस्कार बन,
रिपीटेड मेमोरीज, रिपीटेड।
ओके,
संस्कार और स्मृति में फर्क, मेमोरी और संस्कार में फर्क है, रिपीटेड मेमोरीज, जब मेमोरीज भी रिपीट होती हैं उसके अनुसार कर्म होते हैं तो वो संस्कार कहलाता है, हैबिट्स, जैसे पर्सनैलिटी भी कहते हैं, पर्सनैलिटी ट्रेट्स कहते हैं,
या
ऐसे कहते हैं ना, कई बार मुझे जल्दी, ये आदमी बहुत हर बात में जल्दी करता है
जी,
ये आदमी हर बात में गुस्सा करता है, शॉर्ट टेम्पर्ड है बहुत,
तो ये
संस्कार बन गया।
और कैटेगराइज भी कर देते हैं ना कई बार हम, कई बार अभी जैसे मैंने अगर किसी व्यक्ति को देखा गुस्सा करते हुए, एक बार देखा कोइंसिडेंटली, दूसरी बार देखा और तीसरी बार भी देख लिया, तो हमें लगता है ये व्यक्ति तो बहुत ही गुस्सा करता रहता है, तो हम भी उनके प्रति भी एक एक इम्प्रेशन क्रिएट कर लेते हैं।
वो अलग चीज़ है इम्प्रेशंस, हाँ इम्प्रेशंस जैसे अलग, इम्प्रेशंस, बिलीव्स और संस्कार,
करेक्ट।
अच्छा, मेमोरी की डिफरेंट स्टेजेस हैं।
ओके,
हल्की मेमोरीज इम्प्रेशंस
जी,
थोड़े बीच के बिलीव सिस्टम्स,
करेक्ट।
और जो वो चीज बार बार और बार बार होती गई होती गई होती गई होती गई होती गई, संस्कार, फिर संस्कार, जब संस्कार बन जाते हैं तो फिर बुद्धि काम नहीं करती, इंटेलेक्ट काम नहीं करती,
करेक्ट।
मतलब यू, हमारा जो माइंड भी उसको एक्सेप्ट करता है, इंटेलेक्ट भी एक्सेप्ट कर लेती है, दिस इज फाइन। जैसे कहता है ना, जैसे आपको, जैसे वो बहुत बड़ा VIP होता है उसको एंट्री पे चेक नहीं करते,
करेक्ट,
है ना, वो फिर संस्कार ऑटोमेटिक काम करते जाते हैं। तो ये जैसे चार एस्पेक्ट हैं मन के, थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स एंड मेमोरीज, इसको इंग्लिश में टीम कहते हैं। अगर पहला शब्द ले लो ना,
TEAM,
राइट? ओके, तो ये TEAM, तो इसके हिसाब से हम समझ सकते हैं हमारी टीम पॉजिटिव है या नेगेटिव है।
how beautiful
मन पॉजिटिव है कि मन हमारा, अगर हमारी टीम पॉजिटिव है, हम बहुत हल्का महसूस करते हैं, लाइट महसूस करते हैं, खुशी हमारे जीवन में आती है। और जब हमारी टीम नेगेटिव हो जाती है तो हम बहुत ही भारी महसूस करते हैं, दुखी महसूस करते हैं, तनाव महसूस करते हैं, रोने को दिल करता है, नींद नहीं आती है, बहुत सारी समस्याएं नेगेटिव मन से पैदा होती हैं, बहुत सारी बीमारियां, लगभग 95% बीमारियां हमारी बॉडी की जनक जो है ये नेगेटिविटी है।
मतलब कितना ज़्यादा इम्पैक्ट करता है हमारे संकल्प हमारे ज़िंदगी पर। बिल्कुल ठीक है आपने। अभी इस बात से मेरे दिमाग में एक सवाल आया, कई बार ऐसा देखा गया है कि पॉजिटिविटी जिसको बोलते हैं उसको आज हम बाहर ढूंढ रहे हैं, जैसे आज इंस्पिरेशनल स्पीकर्स हैं, इंस्पिरेशनल लीडर्स हैं जिन्हें हम फॉलो करते हैं, लेकिन देखते तो हैं लेकिन मन उसे एक्सेप्ट भी करता है लेकिन फिर हम उसे अप्लाई नहीं कर पाते। तो ये एप्लीकेशन लेवल और मन से क्या कहाँ इधर इसमें कहाँ कौन सी कड़ी है जो कमज़ोर है जिसकी वजह से हम कोई भी चीज़ को अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं?
यस, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये
जी,
क्योंकि ये हम सबकी समस्याएं होती हैं, हम सबकी समस्या है। मैं समझता हूँ सारे जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं
सबका ये
सबका
क्वेश्चन,
मतलब
तो
दुनिया में शायद ही हर व्यक्ति चाहता है कि जो सोचे वो कर भी ले
जी,
या जो सुने वो कर ले, अच्छी बातों कर ले
जी,
किंतु वो कर सोचता बहुत है, प्लान भी बहुत करता है, किंतु एग्जीक्यूशन में आने के टाइम तक वो चीज़ बहुत 10% भी नहीं रह पाती, 5% भी नहीं रह पाती। ऐसा क्यों होता है
जी?
हमारी प्लानिंग बहुत अच्छी है, एग्जीक्यूशन देखो तो उसका 5% भी नहीं,
निल है।
ऐसा क्यों होता है
जी?
अच्छी मन के जो है तीन एस्पेक्ट्स हैं, ये तीन तो मैंने, अब चार तो मैंने एस्पेक्ट्स बताए।
करेक्ट,
मन के जैसे हम कह सकते हैं कि मन के जो ना जो हमारा कॉन्शियस माइंड है ना
जी,
वो लगभग सिर्फ 5-8% ही है
ओके,
जो हमारे कंट्रोल में है।
ओके, ओनली 5-8% ओके,
और सबकॉन्शियस माइंड फिर जो है हमारा वो लगभग जो है 10-15% तक। और 80% माइंड हमारा अनकॉन्शियस माइंड है।
ये तो बहुत बड़ी समस्या है,
इसलिए जो हम करते हैं सिर्फ 5-8% ही हमारे मन हमारे बस में है, कंट्रोल में है, बाकी 12-15% में बताया आपको सबकॉन्शियस माइंड
बताया, सबकॉन्शियस माइंड
है वो हमारे बस में नहीं है, वो फिर 80% तो हमारे बिल्कुल बस में नहीं है। इसलिए आप देखते होंगे अधिकतर हमारा एग्जीक्यूशन लेवल जो 5% ही रहता है, 5-8% ही रहता है।
पर जो सक्सेसफुल लोग हैं उनके लिए ये ऐसा क्या वो स्पेशल करते हैं जिसके वजह से वो सक्सेसफुल हो जाते हैं और हम नहीं होते हैं, ऐसा क्या?
हाँ, ये फर्क है। ऐसा है जिनका सबकॉन्शियस माइंड जो अपने सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड को बढ़ाते रहते हैं।
ओके,
सबकॉन्शियस माइंड को ज़्यादा बढ़ाते हैं, अपने माइंड को एक्टिवेट करते हैं, वो सबकॉन्शियस पे विजय पा लेते हैं, धीरे धीरे अनकॉन्शियस पे विजय पाते जाते हैं। तो धीरे धीरे वो, ये फर्क है इंसान में और फरिश्ते में।
ओके,
फरिश्ता उसे कहते हैं जिसका टोटल माइंड कॉन्शियस हो गया, 100% माइंड कॉन्शियस हो गया।
तो ऐसे भी व्यक्ति हमारी दुनिया में है?
ऐसे व्यक्ति अभी है नहीं,
अभी है नहीं पर बन सकते हैं।
There is always a scope. अगर जैसे 10% वाले हैं जो 10% कॉन्शियस माइंड है, 15% कॉन्शियस माइंड है, 12% कॉन्शियस माइंड है
जी,
वो जीनियस कहलाते हैं।
ओके,
वो दुनिया से अलग दिखाई देते हैं। 100% हो जाए तो फिर तो आप समझ सकते हैं क्या होगा।
बिल्कुल,
वो तो एंजल्स बन जाएंगे,
एंजल्स
जिनको सब living कुछ
angels.
Living angels. ऐसा कोई अभी है नहीं।
डॉक्टर साहब, ये तो बात हुई सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड की, पर इसके अंदर में थोड़ी सी और क्लैरिटी अगर हमें मिल सके कि उसका सोर्स क्या है, एग्जैक्ट सोर्स क्या है।
देखिए, मन जो है ना, वैसे जैसे आपने अगर समझा हो, राजयोग को थोड़ा समझा हो
जी,
और जो हमारे व्यूअर्स हैं राजयोग के बारे में जानते हैं,
हाँ जी,
तो ये रहस्य परमात्मा ने हमें बताया है सभी हमको, हम सभी आत्माओं के लिए
जी,
कि आत्मा जो है सोल, जैसे हम एक इंसान जो हम कहते हैं मैं, कहते हैं ना मैं, ये जो मैं कौन है, इसमें जैसे हम हॉस्पिटल में कोई सीरियस पेशेंट आता है उसको हम बचाने की कोशिश करते हैं, बचा नहीं पाते हैं, तो डॉक्टर क्या कहता है, डॉक्टर पेशेंट्स के रिलेटिव को बाहर आके, आईसीयू के बाहर या ओटी ऑपरेशन थिएटर के बाहर,
अब तो बस ऊपर वाले
नहीं, हमेशा ये बोलेगा ना कि भाई हमने अपनी बहुत कोशिश की बचाने की कोशिश की, किंतु बचा नहीं पाए, वो चला गया और बॉडी ले जाएगी।
करेक्ट,
ऐसे ही बोलेगा ना।
बिल्कुल बिल्कुल,
चाहे वो इंडिया में हो, चाहे यूएसए में हो, चाहे लंदन में हो, कहीं भी किसी भी मतलब कंट्री में सेम चीज, इट इज सेम।
बिल्कुल,
तो बॉडी ले जाए, कभी ये नहीं कह सकते पेशेंट को वापस ले जाओ तो क्या निकल गया।
करेक्ट,
वो चला गया, कौन चला गया, आत्मा चली गई। तो आत्मा जो है एक पॉइंट ऑफ एनर्जी है जिससे ये एनर्जी निकलती रहती है,
okay.
जिससे सारी हमारी बॉडी में 80,000 बिलियन कोशिकाएं वो काम करती है।
okay.
आत्मा है तो ये सब काम करता है, वो निकल जाता है कुछ भी काम नहीं करता, राइट?
करेक्ट,
डेड बॉडी कहते हैं उसको ना।
करेक्ट,
तो आत्मा की जो 7 एनर्जी जो निकलती है उसके अंदर से ना,
जी,
वो एनर्जी जो है उसके आधार पे जो हमारी पहले से कॉन्शियसनेस बनती है, से हम चेतना कहते हैं, अंतरात्मा कहते हैं, कॉन्शियंस कहते हैं,
जी,
दिल भी कहते हैं उसको।
करेक्ट,
हार्ट ऑफ द सोल।
करेक्ट,
कॉन्शियंस, मेरी कॉन्शियंस नहीं मान रही, मेरी कॉन्शियंस ये कहती है,
हाँ, मेरी,
मेरी अंतरात्मा ये कहती,
हाँ,
है,
अंदर से मेरी फीलिंग्स इस चीज के, हाँ, प्रति ये है,
ये है।
करेक्ट,
तो इसे कॉन्शियसनेस कहते हैं,
जी,
कॉन्शियंस कहते हैं। और उस इसमें बेसिकली क्या, कॉन्शियस में क्या है, ये जो एनर्जी आत्मा से जो निकल रही है, आत्मा जो कि मैटर नहीं है, इस बियॉन्ड मैटर, राइट?
करेक्ट,
शरीर 5 तत्वों का बना है किंतु आत्मा मैटर नहीं है, एनर्जी है, ऊर्जा है, स्पिरिचुअल एनर्जी है, और उससे 7 एनर्जी निकलती रहती है, ज्ञान, नॉलेज ऑफ द ट्रूथ, प्योरिटी, पीस, लव, हैप्पीनेस, ब्लिस एंड पावर्स। और इसके बेस पे जो हमारा विवेक बनता है जिसे हम विजडम कहते हैं।
ओके,
विवेक क्या है, परखने की शक्ति है, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है,
जी, दिल में एनालाइज कर सकते हैं। करेक्ट,
इस दिल में कोई बात मुझे अच्छी लगी कि तो फिर विवेक उसको परखेगा कि ये ठीक है गलत है।
करेक्ट,
मुझे डायबिटीज है मान लीजिए, सामने गुलाब जामुन रखा है, अब दिल को तो बहुत अच्छा लग रहा है ना, कॉन्शियस मेरे को बहुत अच्छा लगता है, पहले इम्प्रेशन मेरे ऐसे हैं, मेरी मेमोरीज गुलाब जामुन की है,
ये बंगाली टेस्ट बर्ड्स को याद,
बंगाली रसगुल्ला है,
बिल्कुल याद है
ना, तो मुझे वो तो लग रहा है, किंतु अब मेरी इसके ऊपर जो मेरा नॉलेज ऑफ ट्रूथ है, प्योरिटी ऑफ माइंड है, अंदर की जो पीस है, अंदर का जो ट्रू लव है, जो मेरे अंदर से आत्मा से निकल रहा है, बॉडी के टेस्ट, ये जो रसगुल्ले का टेस्ट कहाँ से आ रहा है,
टेस्ट बर्ड से,
जीभ से, टेस्ट बर्ड से आ रहा है,
बिल्कुल
उसकी मेमोरी अंदर रिकॉर्ड है,
बिल्कुल
वो मुझे कहती खा लो, ये तो मेरी जो अंदर की कॉन्शियसनेस कहती नहीं मुझे डायबिटीज है,
नहीं खाना है ना? और कई बार खा करके फिर हम पछताते भी हैं कि क्यों खा,
तो वो जो है परखने की शक्ति, राइट रॉन्ग को परखने की शक्ति,
ओके,
वो विवेक है, विजडम है,
ओके,
ये एनालाइज करता है बीच में, अंदर की जो ट्रूथ है, बीइंग है, ह्यूमन बीइंग जो बीइंग है उसको, और दूसरा ह्यूमन है बॉडी, जो बॉडी की मेमोरीज है, तो उसको एनालाइज करता है, डिफरेंस कर लेता है, राइट? तो विवेक विजडम है, तो विवेक हमारा ठीक होगा, फिर उसके आधार पे बुद्धि निर्णय करती है,
okay.
फिर एक मतलब फिर हमारी निर्णय करने पावर ऑफ जजमेंट है, ये पावर ऑफ डिस्क्रिशन है, फिर पावर ऑफ जजमेंट है,
okay.
right? ये इसी से बन रही है, कॉन्शियसनेस में कितना हमारा ट्रूथ है, हमारे कॉन्शियसनेस में कितना ट्रूथ है, दिल में कितना ट्रूथ है, okay. तो ये हमारा विवेक हो गया, फिर हमारा इंटेलेक्ट, सो प्रॉपर इंटेलेक्ट कहेंगे उसको,
करेक्ट,
और फिर जो है उसके आधार पे हमारा सबकॉन्शियस माइंड बनता है,
करेक्ट,
राइट,
ट्रू,
सबकॉन्शियस माइंड माना बेसिकली ये भी हमारी सोल की पावर्स के आधार पे है,
okay.
क्योंकि हमने जो पावर ऑफ डिस्क्रिशन ली पहले, फिर पावर ऑफ जजमेंट ली, फिर हमारे विस्तार को सार मिलाने की शक्ति, कोई बड़ी बात को छोटा करने की शक्ति, समेटने की शक्ति,
okay.
सहन करने की शक्ति,
ये तो कोई, बहुत सारे
कोई सिचुएशंस को सामना करने की शक्ति, नई सिचुएशंस आई, नई प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में रोज आती हैं,
बिल्कुल
हम उनको फेस करते हैं, अचानक से अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स आ जाती हैं लाइफ,
बिल्कुल
उनको फेस करना, पावर टू फेस, फिर समाने की शक्ति, पावर टू एडजस्ट, कोई व्यक्ति आ गया, कोई ऐसी बात आ गई, उसको एडजस्ट कर पा रहे हैं क्या,
करेक्ट,
या हम इरिटेट हो गए, या हम उसको रिएक्ट कर रहे हैं, और फिर पावर टू कोऑपरेट, सहयोग करने की शक्ति, ये जो 6 शक्तियां जो बाकी हैं उनसे हमारा जजमेंट वो बनता है हमारा चित्त बनता है,
चित्त मतलब मन,
सबकॉन्शियस माइंड जिसे,
सबकॉन्शियस माइंड, ओके,
तो ये चारों बातें मिलकर के हमारा क्या बन जाता है, हमारी इंटेलेक्ट बन जाती है, बुद्धि से कहते हैं।
ओके
राइट, दिल, विवेक, बुद्धि प्रॉपर और चित्त,
ये चारों चीजें एक अपने आप में एक पैकेज है।
पैकेज
एग्जैक्टली exactly.
जैसे मैंने मन के चार एस्पेक्ट आपको बताए ना,
हाँ जी,
तो ऐसे ही बुद्धि के चार एस्पेक्ट।
ओके
राइट
जी,
तो अब इसके आधार पे हम समझ सकते हैं मन का सोर्स क्या है
जी।
तो जैसे हमने बताया अभी आपको, ये हमारा हो गया इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट सब हमारा सबकॉन्शियस माइंड इज बेसिकली वन ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्ट ओनली।
ओके,
सबकॉन्शियस माइंड वैसे हम बोलते हैं कि माइंड का एस्पेक्ट है।
करेक्ट,
माइंड का एक मतलब वो है डायमेंशन
है, डायमेंशन है, करेक्ट,
पर इट इज एक्चुअली एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्ट।
ओके,
सोर्स मतलब वो निकल रहा है हमारे कॉन्शियसनेस से, निकल बन रहा है इंटेलेक्ट से ही बन रहा है
जी।
राइट, और उसके उसके फिर हमारा फिर बाहर हमारा भाव उसके उसके जो बाहर जो है वो है हमारा मन है, कॉन्शियस माइंड जैसे कहते हैं, जो हमारे बस में है
जी।
ये पहले मेमोरीज हैं, फिर एटीट्यूड्स हैं, फिर इमोशंस हैं, फिर थॉट्स हैं, ये दोनों चीज मिलकर के हमारा सटल बॉडी बन जाती है।
ओके,
सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं इसको। और उसके जो बाहर भी पांच तत्वों का बना हुआ फिजिकल बॉडी।
ओके,
सो बेसिकली आत्मा की जो सोर्स है ना, जो आत्मा है उसका जो आत्मा सोर्स है
जी,
मन और बुद्धि दोनों का।
ओके,
और संस्कारों का सोर्स भी आत्मा ही है।
ओके,
तो बेसिकली कहते हैं आत्मा की तीन शक्तियां मन बुद्धि संस्कार कहते हैं ना हम लोग।
हाँ जी,
तो वो जो है ये जो है इसको अब कॉन्शियसनेस हमारी जितनी क्लीन और प्योर होती है, ट्रूथ पे आधारित होती है, उसके आधार पे हमारा सबकॉन्शियस माइंड, अगर हमारी इंटेलेक्ट क्लीन है, मतलब कॉन्शियसनेस क्लीन है, ट्रूथ पे आधारित है
जी,
मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, तो फिर हमारी सबकॉन्शियस माइंड क्लीन होती है।
okay.
इसी के सच्चित आनंद, अगर आपके दिल में सत्य है तो चित्त आपका आनंद स्वरूप है, एकाग्र है, शांत है और आनंद स्वरूप।
बहुत अच्छा।
और फिर मन जो है ना आपका कॉन्शियस माइंड, आपका सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल में आ गया
जी,
और फिर आपका कॉन्शियस माइंड ज्यादा अच्छा असर करेगा। जैसे मैंने आपको जीनियस लोगों की बात की
जी,
जीनियस कौन है और नॉर्मल और डल बुद्धि कौन है,
उन दोनों के बीच का डिफरेंस कौन तय करता है, वो हमारे मन
ये, की ये हमारी जो हमारी जो कॉन्शियसनेस है, दिल है
जी,
कितनी क्लीन है, कितनी ट्रूथ पे आधारित है।
करेक्ट,
उनका उनका कॉन्शियस माइंड ज्यादा हो गया ना।
करेक्ट,
उनका कॉन्शियस 8% नहीं, उनका मन हो गया, उनका हो गया 8+12, 20% उनका मन कॉन्शियस हो गया,
इसीलिए वो ज्यादा जीनियस,
ज्यादा जीनियस हैं, ज्यादा उनको ज्यादा हमसे ज्यादा दूसरे लोग आम आदमी से ज्यादा अच्छा अचीव करते हैं,
अचीवमेंट
फोकस। जैसे हमारे डॉक्टर अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम
जी, बिल्कुल
एक एग्जाम्पल अभी थे हमारे सामने ही थे ना।
एग्जैक्टली,
तो उनका कैसे वो सारे सारी समस्याओं के बारे में रह के बिल्कुल शांत रहते थे,
सही बात,
चरिज्मा था उनका। तो ये जो है डिफरेंस है, एक इंटेलेक्चुअल कहें, जीनियस कहें,
और एक
आम आदमी में।
बहुत अच्छा,
तो सारा किस पे आधारित है,
सारी चीजें आधारित है हमारे मन पर, और इस मन पर इस तरह से आधारित है कि हमें अपने अपने मन को कंट्रोल करने की जरूरत है, और साथ ही साथ ये जानने की जरूरत है कि अगर हम मन पे जीत जाएंगे तो हम जगत पर जीत जरूर पाएंगे। थैंक यू सो मच भाई जी, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द शो। ओम शांति। दोस्तों, आज हमने क्या जाना कि मन हमारा कितना पावरफुल है, एक ऐसी एनर्जी है जिसे आप सही डायरेक्शन में अगर लेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी, और ऐसी ऐसी छोटी छोटी वैल्यूज़ के बारे में आज हमने बहुत सारी बातें की। लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी जानने की ज़रूरत है कि मन, जिसे हमने एक बेलगाम घोड़े की तरह तो कहा था, लेकिन उसको लगाम भी ज़रूर आप लगा सकते हैं अपने अच्छे सुविचार से, और साथ ही साथ सकारात्मक विचार से। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं, कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो ज़िंदगी बने आसान में। ओम शांति।